बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़ी सी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो वैसे में थैंक्सगिविंग डे करते हैं उसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वैसे नॉर्मली व्यक्ति के जीवन में अगर थैंक्सगिविंग की भाव आ जाए, किसी देश में, किसी सोसाइटी में आए ना आए, अगर पर्सनली इंडिविजुअल में ये फीलिंग, ये इमोशन आ जाए, तो वो अपना भी भला होता है, समाज का भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। तो द बॉटम लाइन इज बी ग्रेटफुल टू दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर लाइफ। जिनका भी हमारे जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन है, छोटा है बड़ा है, जिसे हम छोटा समझते हैं, वो आकार में छोटा हो सकता है क्वांटिटी में छोटा हो, पर जिस समय किसी ने आपको, हमें कुछ हेल्प किया, अगर उस समय वो पर्टिकुलर हेल्प नहीं होता, शायद हमारी लाइफ कुछ दूसरे तरह का होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दिवाली में अंधेरी रात को दिया जलाते हैं, दिया सूरज की तरह काम नहीं कर सकता नेचुरली, पर अगर दिया ना हो तो अंधेरे में आप रास्ता भी नहीं चल सकते। तो आप सूरज के चक्कर में दिया की कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं आंक सकते। आपकी सेल फोन में टच लाइट होता है, आप फ्लैश लाइट लेकर चलते हैं, आप किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि सूरज की कंपैरिजन में टच का वैल्यू कम है, क्योंकि टच तब काम आता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कोई छोटा या बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन अगर उस पर्टिकुलर जगह या टाइम पर नहीं होता तो हमारे लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए टू रिकॉग्नाइज देम, टू फील ग्रैटिट्यूड टू देम, दैट इज कॉल्ड थैंक्स गिविंग। इससे फायदा किसको है? फायदा व्यक्ति को अपने को होता है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वैसे नॉर्मली चलते फिरते तो हम अप्रिसिएशन बहुत करते रहते हैं, कभी कभी जेन्युइनली, कभी कभी वैसे ही थोड़ा सोशल माहौल बनाए रखने के लिए, वो अलग बात है। आप करते हैं नहीं करते हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को थोड़ा गुड फील कराने के लिए, आपका कोई स्वार्थ नहीं है इसके बदले, बस जस्ट आप किसी को अच्छा फील कराते हैं, वो बड़ी बात नहीं। अप्रिसिएशन जो आपके दिल से निकले कि आपको कुछ मिला, आपने कुछ, आपकी लाइफ में कुछ हेल्प हुआ किसी के कारण, सो इट्स ए ब्यूटीफुल सोलफुल क्वालिटी अवेलेबल टू एवरीवन इन एवरी सर्कमस्टेंस, इट्स लाइफ गिविंग। येट इट इज द ऑल टू कॉमन वे ऑफ आवर टाइम, when something is done that is good, the problem है कि हमारे life में बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा है, loving है, caring है, हमें फायदा करता है, पर हम उसको recognize नहीं करते, क्योंकि we'll take it in grant। पर जब कोई चीज थोड़ी सी भी हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो बुरा ही हो, फिर हम बहुत ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं। क्रिटिक होने में बुरी बात नहीं है, पर अगर आप उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में अप्रिशिएट भी करते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा होता है, अगर मैं अप्रिशिएट उतने ही क्वांटिटी में, उतनी ही डेंसिटी के साथ करूं जितनी डेंसिटी के और मात्रा में मैं क्रिटिसाइज करता हूं मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, जो मैं शिकायत करता हूं, कंप्लेन करता हूं, तो समझ में आता है कि व्यक्ति बड़ा बैलेंस्ड, पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन है। आजकल इसकी बड़ी बड़ी वैल्यू है जी। आप कितने अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई केयर नहीं करता है। केयर करते हैं कि आप पॉलिटिकली कितने करेक्ट हैं। मतलब आप हिपोक्रेट, कितना बढ़िया हिपोक्रेट हैं, आज की सोसाइटी आपको उतना रिस्पेक्ट देता है। पाखंडी की जमाना है। पॉलिटिकली करेक्ट का क्या मतलब होता है? हिपोक्रेसी है ना। आप जानते हैं कि ठीक नहीं है तो कहना पड़ेगा हाँ ठीक है, सबके अपनी अपनी नजरिया है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। वो अलग बात है, पर जब आप बहुत सारे लोग हमारे या हम बहुत सारे समय तक ज्यादातर हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, या खुद से या दूसरों से या भगवान से या सोसाइटी से या हमारे देश से कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था नहीं हुआ, या ये हुआ जो मैं नहीं चाहता था। पर यकीन मानिए, हर आदमी अगर कागज कलम लेकर बैठे कि मेरे साथ क्या क्या अच्छाइयां हुई और क्या क्या बुराइयां हुआ, कितनी बुराई मेरे साथ हुई और कितनी अच्छी चीजें मेरे साथ हुई, अगर आप कभी कागज कलम लेकर बैठे तो आप देखेंगे आपके साथ अच्छे होने के नंबर खत्म ही नहीं होंगे, बुरा होने का लिमिटेशन आएगा। कभी आप स्ट्रेस में हो, एक व्यक्ति ने लिखा, महिला ने, कि ऑफिस में उन दिनों काफी स्ट्रेस चल रहा था, घर में छोटा बच्चा था 6 महीने 1 साल का, उसके अपना टेंशन है, ऑफिस का काफी प्रेशर है, तो चारों तरफ से लाइफ बड़ा मिजरेबल, बड़ा दुखी हो गया था। महिला ने लिखा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इन चीजों को हैंडल करूं। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया, गाड़ी चलाते चलाते, वैसे तो बार बार मैं कहता हूं कभी अकेले रहने की आदत डालिए, जहां आपके पास कुछ भी ना हो, जहां आपका दिमाग चले, मन चले, बाकी और कुछ नहीं, ना सेलफोन, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना टीवी, ना कंप्यूटर, ना रिलेटिव, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे। बहुत सारे लोग गाड़ी में अपना रेडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, कभी कभी अकेले भी चला करिए, ना कुछ नहीं बसता हो, आपका दिमाग चलेगा। महिला आ रही थी वैसे ही बड़े स्ट्रेस में, कभी कभी गाड़ी में भी बड़ी नई नई नए विचार आ जाते हैं, क्योंकि आप बड़े शांत होते हैं, चुपचाप चलते रहते हैं, आपके आगे पीछे कोई होता नहीं, अकेले में तो काफी नए नए विचार आते हैं। उसको एक विचार सूझा, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, आज दिन भर मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ किसी ने मुझे थैंक्स बोला, किसी ने प्यार से बात की, कुछ भी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी अच्छी चीजें होती है। जो काम मैंने हाथ में लिया था आज पूरा हो गया। तो उसने लिखा, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी लाइफ ही बदल गया। अब मैंने इसको अपना पार्ट ऑफ डेली रूटीन बना लिया कि रोज सोचूं कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। बुरा होने का तो सोचने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो। जैसे ही व्यक्ति सोचने लगता है मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, जब उसको पॉइंट आउट करने लगता है, उसका दुख कम होने लगते हैं। देवियों सज्जनों, जब आप अपने साथ हुए अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, आप दूसरों पर एहसान नहीं करते, जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो सचमुच आप दूसरों के लिए नहीं दिखाते, ये हमें हेल्प करता है, हमारे अंदर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, हमें ज्यादा सुखी रखता है। अगर मेरा जोर ज्यादा मेरी प्रॉब्लम पर है, मेरे साथ घटने वाले बुरी चीजों पर है, तो मैं अंदर अंदर ही बहुत ज्यादा दुखी होऊंगा, नुकसान मेरा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के जीवन में दुख नहीं आते, सुख नहीं आते, हो सकता है मेरे और आपसे ज्यादा दुख में लोग जी रहे हो, और हो सकता ही नहीं जीतते, लाखों लोग जीतते हैं, करोड़ों में जीतते हैं। तो इसीलिए असली बात है कि आप अगर अपने साथ होने वाले अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं, और जिसने जिसके कारण आपको ये सुख मिला उसको अगर आप सामने से अप्रिशिएट करते हैं या दिल से अप्रिशिएट करते हैं, तो सामने वाले को तो जो खुशी होगी होगी, आपको जरूर खुशी होगी। So feeling grateful and expressing it decreases stress, increases happiness and makes people feel better about life. जब भी लाइफ में नेगेटिव विचार आए, मेरे साथ बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, जो भी बुरी चीज हो रहा है, वो अन्याय अत्याचार जरूरी नहीं है कि आपका स्पाउस कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके नेबरहुड कर रहा है, आपकी पुलिस कर रही है, आपकी सोसाइटी कर रहा है, आपके देश कर रहा है। हो सकता है कि ज्यादातर अन्याय अत्याचार आपके जीवन में भगवान करवा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ही ये क्यों दुख है, जो भी आपको जिस भी कारण से लग रहा हो, अगर आप उस क्षण लाइफ को थोड़े पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव एक बहुत बड़ा शब्द है, सिंपल चीज है कि आप अपने साथ होने वाली अच्छी चीजों को ढूंढे। हो सकता है आपके अंदर लाइफ में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, बहुत ज्यादा आप दुखी हो सकता है 2-4 घंटे तक आपको एक भी वर्ड ना सूझे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी ना सूझे। दिमाग पर प्रेशर डालें, एक बार दिमाग में एक भी अच्छी चीज सूझा कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ आज, इस हफ्ते, 2 दिन में 3 दिन में 1 हफ्ते में, साल में, पूरी जिंदगी में, आपकी कलम अगर चलता गला आप देखेंगे कहीं एंड ही नहीं होगा, इतनी अच्छी चीजें आपके साथ होती रहती है, हम कभी उसको ध्यान नहीं देते। और जब अच्छी चीजों का ख्याल आने लगे तो व्यक्ति का स्ट्रेस भी कम होता है, टेंशन भी कम होता है, तो उसके जीवन में सुख और कुछ नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है। आपका मन अगर शांत है, स्ट्रेस फ्री है, तो आप सुखी हैं, अगर नहीं है तो आप दुखी हैं। तो इसका एक ही कारण है कि मैं खुद अपने आप को सुखी या दुखी बना सकता हूं। और अगर आप सुखी हैं तो आप जिसके साथ जैसा भी डील करेंगे वो व्यक्ति भी आपके साथ सुखी मिलेगा। जो बड़े दुखी आत्माएं होती हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ मिलने वाले लोगों की लाइफ भी वैसी होती है। कभी आप किसी स्टोर में जाते हैं, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, ये बड़े मजेदार चीज है। दुनिया में ज्यादातर जगह आप देखिए कि सरकारी ऑफिसों में ऑफिसर लोग को ज्यादा ही बदतमीजी करते हैं, यहां भी करते हैं, वहां भी करते हैं, सब जगह। वो फ्री का पैसा मिलता है, बैठे बैठे कमाना मिलता है, तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, करते हैं। आप किसी सरकारी ऑफिस में यहां भी गए या भारत में गए, कहीं भी गए, वो डील करने वाला बड़ा कभी एरोगेंस में बात करता है, केयरलेसली बात करता है, आपको थोड़ा ह्यूमिलिएट कर देता है, बुरा लगता होगा। तो छोटी छोटी चीजों में हमें बुरा जो लगता है, अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिवली लें उस टेंशन को कूल डाउन करने के लिए, अगर हम हमारे साथ घटने वाली अच्छी चीजों पर ध्यान दें तो लाइफ ज्यादा खुशनुमा होता है। ग्रैटिट्यूड या जो कृतज्ञता या जो एहसान मानना, ये आपका एक दिव्य गुण होता है हर व्यक्ति का, वो गुण जो आपको भी सुखी रखे और आपके पास आसपास रहने वाले लोगों को भी खुश रखे। इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच वी पोजेस। तो एहसान मानने के लिए जरूरी नहीं है, सुखी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कितना है, जरूरी है कि आपके पास जितना है आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो या नहीं। जो भी है अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो तो आप अप्रिशिएट करो, आप ग्रेटफुल होगे, आप थैंकफुल होगे। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो तो आपको सिर्फ अपने साथ घटने वाले बुरी चीजें दिखेगी, और वो जो दिखेगी नुकसान किसी का नहीं है, खुद का होगा। आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, ज्यादा तनाव में रहेंगे, ज्यादा दुखी रहेंगे, आप अपने आप को ज्यादा विक्टिम सोच के जिएंगे कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। अरे ठीक इसका उल्टा, इनग्रैटिट्यूड इज ए क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल ईगो। ध्यान रखिए देवियों सज्जनों, जो लोग ग्रेटफुल ज्यादा होते नहीं है, आपको बुरा लगता होगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया और उस व्यक्ति ने कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप मत सोचिए कि वो बहुत खुश होगा और आपको बुरा लग रहा है, वो सबसे ज्यादा दुखी आत्मा है। उसका ईगो वो अलाउ नहीं करता है कि वो ग्रेटफुल बने। वो व्यक्ति ज्यादा तरह इगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं, एरोगेंट होते हैं, और जिसके लाइफ में ईगो है वो ईगो बड़ा बढ़िया चीज है। जिसके पास ईगो है वो दूसरों को हर्ट करता है, नुकसान करता है, वर्बली करे, फिजिकली करे, जैसा भी हो, मेंटली करे। पर यकीन मानिए इगोइस्टिक व्यक्ति के लाइफ में कभी सुख नहीं होता। जिसके लाइफ में ईगो जितना कम है वो व्यक्ति इतना सुखी है। जिसके लाइफ का जितना ज्यादा ईगो है वो खुद ही उतना ज्यादा दुखी है। जितना ज्यादा ईगो होगा वो उतने ज्यादा लोगों से नफरत करेगा, उतने ज्यादा लोगों से दुखी मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति का व्यवहार उसको चोट लग जाए। ईगो उसके पास, इसीलिए हमारा ईगो ही हमें सरल सिंपल बनने नहीं देता है। सिंप्लिसिटी क्या है? मैं सिंपल पर्सन हूं, उसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं, पर एक सिम्टम यह है कि आप ग्रेटफुल भी होते हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हैं आपके लाइफ में किस किस का क्या कंट्रीब्यूशन है। जहां ये ग्रेटफुलनेस नहीं है, ये कृतज्ञता का भाव नहीं है, नेचुरली वहां ईगो ज्यादा है, और ईगोइस्टिक व्यक्ति से ज्यादा दुखी कोई नहीं। वो आपको शो करे ना करे, अगर कभी कोई मशीन ऐसा बने जो मन को पढ़ सके तो आप मशीन लगाकर देखेंगे उस व्यक्ति के मन में कितना वो दुखी आत्मा हो। और ऐसे व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। हमारे नीति शास्त्र में एक सुंदर श्लोक है, असंतुष्टो विनश्यति। जो कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब कोई उसको बर्बाद करता नहीं है, वो खुद ही अपने आप से बर्बाद होता है। क्यों? सिंपल चीज है साइकोलॉजिकली, वो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। जितना स्ट्रेस रहेगा आपकी लाइफ उतना मिजरेबल होगा, आप दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफन पीपल रिमेम्बर द बैड हैपनिंग परहैप्स बिकॉज दे मेक द डीपेस्ट इंप्रेशन द सबकॉन्शियस एंड आर नॉट एक्सपेक्ट। नेचुरली जो बुरी चीजें हम जल्दी याद रखते हैं, लंबे तक याद रखते हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे साथ सब अच्छा हो, मैं दूसरों के साथ क्या करता हूँ वो कोई मैटर नहीं करता है, पर मेरे साथ सब अच्छा हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की फितरत है। पर जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है वो इसीलिए याद रहता है कि वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था और ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो भी आपके शरीर को ट्रबल करता है। जो बिहेवियर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो भी आपको ट्रबल करता है। कोई भी चीज अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सके फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, तो वो आपको फायदा करता है। अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, खाना हजम नहीं होता है तो शरीर को नुकसान करता है, विचार हजम नहीं होता है तो आपके माइंड को करप्ट करता है। अब डाइजेस्ट ना होने का मेंटली एक ही मतलब है, बेसिकली ईगो हमें बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने नहीं देता है। हमें क्यों नहीं दिखता, हम खुश क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जो गुड अच्छी चीजें हमारे साथ होता है हम सोचते हैं ये तो होना ही चाहिए था मेरे साथ। मेरे साथ ध्यान दीजिए, तो फोकस लाइन है कि मेरे साथ होना, दूसरे के साथ की कोई गारंटी नहीं। मेरे साथ अच्छा होना ही चाहिए, अगर हो रहा है देयर इज नथिंग न्यू और समथिंग स्पेशियल, इसीलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वही व्यक्ति दुखी होता है, वही व्यक्ति बुरा होता है जो अच्छी चीजों को, अपने साथ घटने वाले अच्छी चीजों को स्वीकार नहीं करता या रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसको ओवरलुक करता है, फिर बुराइयों को देखता है। इसीलिए जीवन में ये जानना जरूरी है कि थैंकफुल होना कितना जरूरी है इंडिविजुअली। और जब आप थैंकफुल होने लगते हैं, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें आपके पास कोई लिमिटेशन ही नहीं होगा। इतने चीजों का कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में है, आप समझ नहीं सकते कि आपकी जो जिंदगी है, आप 15 साल के हैं, 70 साल के हैं, 50 साल के हैं, 80 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपके लाइफ की हर वो छोटी छोटी मोमेंट, खून के हर एक एक कण दूसरों के कंट्रीब्यूशन से बना है। आपकी छोटी छोटी खुशियां दूसरों के कंट्रीब्यूशन से बना है। काउंट करते चलेंगे आप खत्म ही नहीं होगा कि कितना आपके लिए किसने किया है। जरूरी नहीं कि जैसे कि हम 24 घंटे मान बैठे कि मेरे लाइफ में जो कुछ है बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली मेंबर्स, सरासर झूठ है। आपके फैमिली मेंबर का आपके लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मोस्टली वो कंट्रीब्यूशन इमोशनली है, और ये अपना हाइपोथेसिस है। आपके लाइफ के में जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो दुनिया में बहुत छोटी से बड़ी बड़ी चीज, सबसे पहले ईश्वर है जिसके कारण आपको ये जन्म मिला। आपके पैदा होने से पहले ये सारी सृष्टि आपको वेलकम करने के लिए तैयार थी। ये सूरज, ये चांद, ये दिन, ये रात, ये पानी, हवा, आकाश, ये सब आपको वेलकम करने के लिए तैयार थी। आपके लाइफ को ठीक से चलाने के लिए सब पहले से रेडी हुए थे। वो हवा, पिछले महीने दिल्ली में दिवाली के बाद इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ कि सरकार ने स्कूलें बंद कर दी कि बच्चे बाहर ना निकले। अनाउंसमेंट हुआ बच्चों को बाहर खेलने मत भेजो, जितना लंबी सांस लेंगे उतनी उसकी लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, हार्ट खराब होगा। घर के अंदर भी पॉल्यूशन है, कम से कम वो दौड़े नहीं, कुछ ऐसा काम ना करे जिससे कि उसको सांस ज्यादा लेना पड़े। ऑफिस वालों को बोला गया कम जहां हो सकते घर में रहो, अभी भी बुरी हालत है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी क्या हालत होती होगी, किसने बनाया ये हालत? इंसान ने। ईश्वर ने तो आपके लिए सारी सुंदर व्यवस्था बना रखी थी। हमने कभी रिकॉग्नाइज किया शुद्ध वायु को, शुद्ध पानी का, शुद्ध आकाश का? कभी नहीं किया। कब करने लगे? जब इंसान ने इतना पॉल्यूट किया, इतना गंदा किया, इतना गंदा किया, हम सोचने लगे कि ये अच्छा है। तब भी कभी कभी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। लोगों ने बिजनेस शुरू किया, अभी भी दिल्ली वगैरह में चलता है। आपको अगर प्योर हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बाजार में सिलेंडर बिकता है, पैसा देकर लाइए, सांस लीजिए, बढ़िया सांस, सब पता लगता है। जब एक सिलेंडर का कीमत इतना है, और ईश्वर आपके पैदा होने से पहले कितने सिलेंडरों से भरमार शुद्ध हवा आपके लिए रखा था। तो इसीलिए सबसे पहला लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो ईश्वर का है। वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड ईश्वर के लिए आनी चाहिए। और आपका धर्म, अध्यात्म, प्रार्थना, पूजा, उपासना, यज्ञ, कर्मकांड का मूल उद्देश्य यही है कि ईश्वर के प्रति थैंकफुल बनो। इसीलिए नहीं कि ईश्वर को आपको खुश करना है, ये तो बाद में सेल्फिश इंसान ने दोबारा कुछ फायदा के चक्कर में इंसान को खुश करने की तैयारी कर बैठा। इंसान भगवान क्यों खुश होगा भला? आपके लड्डू खा करके, आपके प्रसाद खा करके, आपकी स्तुति सुनकर, उसके घर में कोई कमी थोड़े ही है कि आप लड्डू दोगे तभी खुश होगा। उसके घर में कोई कमी थोड़े ही है कि आप तारीफ करोगे, मंत्र बोलोगे तभी वो खुश होगा। ये सिस्टम बनाया गया था कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनो, तुम्हें फायदा होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, उसका मन इतना साफ होता है, निर्मल होता है। निर्मल मन का सिंपल रिजल्ट है कि आप उतना खुश होंगे। आपको पता है पूजा करने का रिजल्ट क्या मिलता है? आपको प्रसाद मिलता है। प्रसाद को मैंने बहुत बार समझाया, प्रसाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है? खुशी। जब आप किसी के प्रति भी थैंकफुल है तो सबसे पहले खुशी आपको मिलेगी, प्रसाद आपको मिलेगा, आपका मन निर्मल होगा। पर हमारी आदत पड़ चुकी है, जैसे इंसान की कंट्रीब्यूशन को भी हम काउंट नहीं करते हैं, तो ईश्वर के भी आशीर्वाद को, ब्लेसिंग को भी हम काउंट नहीं करते। तो हमारे दुख का मूल कारण क्या है? कंपेयर करते हैं। मैं दुखी इसीलिए नहीं हूं कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा घट रहा है, मैं दुखी इसीलिए हूं क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके साथ उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए दुखी नहीं हूं कि मैं बहुत बीमार चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मेरा दुख का कारण है कि जिन लोगों को मैं जानता हूं उनको इतनी मात्रा में दुख तो नहीं मिला। सुनामी आई 8-10 साल पहले, लाखों लोग मरे, 2-4 लाख दुनिया में अलग अलग देशों में मरे, भारत में भी काफी लोग मरे, अफ्रीका में मरे, अलग अलग जापान, कोरिया वगैरह देशों में मरे। लोगों को बहुत दुख होता है। आपके यहाँ न्यूयॉर्क में इधर उधर बाढ़ आता है, वो टर्नेडो आता है, तूफान आता है, काफी लोग मरते हैं। देखिएगा दुनिया में सुनामी में 2-3 लाख लोग मरे, अपने न्यूज में देखा, बहुत दुख हुआ आपको। और आपको पता चला कि आपके देश में, जिस देश से आप प्यार करते हैं, जहां आपका जेन्यून कनेक्शन है, जब हम यहां रहते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये अमेरिका के या इंडिया के, वो इंडिविजुअल डिसीजन है, मतलब आपका अटैचमेंट किसके साथ ज्यादा है। और आप जिस देश से जुड़े हुए हो, उस देश में 20,000 लोग मरे और दुनिया भर में उसी दिन 2 लाख लोग मरे, आपको कौन सी चीज के लिए ज्यादा दुख होता है? अपने देश के मरे 20,000 लोगों के लिए। अगर 20,000 में से पता चला आप जिस स्टेट में जिस सिटी में रहते हो वहां 2,000 लोग मरे, पता चला ह्यूस्टन में ही 2,000 लोग मरे, आपके दुख और ज्यादा होता है। उन 2,000 लोगों के लिए ज्यादा दुख होता है बनिस्बत 2,00,000 लोगों के। और आपके पता चला आप जिस कम्युनिटी में रहते हो वहां 200 लोग मरे, दुख और ज्यादा होता है, 200 के लिए ज्यादा दुख होता है। पता चला आपके रिलेटिव में जिनको आप जानते हो ऐसे 20 लोग मरे, 20 लोगों के मरने का दुख ज्यादा होता है। और पता चला आपके फैमिली में ही 2 लोग गए या 1 आदमी गया, सबसे बड़ा दुख टूटता है। और उसी आपदा में अगर आपका एक हाथ कट गया, पैर कट गया, तो सबसे ज्यादा दुख आपके अपने साथ है। कभी आप जाकर देखिएगा जहां भूकंप होता है, सुनामी होती है, पूरी की पूरी गांव तबाह हो जाता है, शहर तबाह हो जाता है, उन लोगों को देखिएगा जिनकी लाइफ में सब कुछ चला गया होता है। वो उतने दुखी आपको नहीं मिलेंगे अगर कोई इंडिविजुअल अकेला किसी कम्युनिटी में उससे कम दुख भी भोगता हो। क्यों पता है? मेरा घर भी गया, मेरे बच्चे भी गए, पड़ोस का भी गया, उसका भी गया, उसका भी गया, सबका गया, मेरा भी गया। 90% दुख कम होता है अकेले का जाता। इसका मतलब दुख का कारण ज्यादा इसीलिए नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, दुख का कारण ये है कि दूसरों के साथ तो नहीं हुआ। घर में पूछो, बीवियों को पूछो, पतियों को पूछो, शिकायत कहां पर है? मिस्टर गुप्ता तो ऐसे बिहेव नहीं करते हैं अपनी पत्नी के साथ। मतलब आप करो कोई बात नहीं है, अगर सब करे आप करते हो तो ठीक है। मिसेस रेड्डी तो ऐसे बिहेव नहीं करती अपनी पति के साथ। मतलब करो कोई बात नहीं, पर बाकी लोग भी तो नहीं करते हैं। मेरा दुख वहां पर है ना, ज्यादातर घर की झगड़ा तो यही है। क्या है कि दूसरे नहीं करते आप करते हो, दूसरे करते आप नहीं करते हो। मेरा दुख मेरे पास कम है, मेरा दुख कम हो जाएगा 10-20 मेरे जान पहचानों में हो जाए तो मेरा कम हो जाएगा, और कोई राज नहीं। तो बेसिकली हमारे दुख का मूल कारण है कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, मुझे क्या मिला वो सब सेकेंडरी हो जाता है, मुझे क्या ना मिला रिलेटिवली दूसरे लोग वो मेरे लिए प्राइमरी हो जाता है। वहीं पर हम एहसान मानना छोड़ देते हैं, हमारे अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड छूटने लगता है, हम अनग्रेटफुल होने लगते हैं। True happiness lies not in gaining what we don't have, but in recognizing and appreciating what we already have. Soon we will discover that counting our blessings is the hardest arithmetic to master. इसीलिए जिस दिन आप count करने लगें कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, अब यकीन मानिए आपकी गणित भी कम पड़ जाएगा, आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज भी छोटा पड़ जाएगा। इतने आपके लाइफ में अच्छा हुआ है, इतने लोगों ने आपको फायदा पहुंचाया है, कितने लोगों ने आपको हेल्प किया है, उसमें से 90% लोग वो फैमिली मेंबर नहीं, आपके रिलेटिव नहीं, आपके नोन पर्सन नहीं, अननोन लोगों ने हेल्प किया, जिनको आप कभी जानते तक नहीं है या आप उनको कभी जानते भी नहीं थे, ऐसे लोगों का हेल्प भी कोई कम नहीं है। जिनको आप जानते हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनका हेल्प तो है ही है। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने एहसान से डूबे हुए व्यक्ति हो। तो फिर आपके मुंह से जो निकलेगा, आपके दिल में जो फीलिंग होगी, वो ग्रैटिट्यूड होगा। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा बुरी तरह ईगो से घिरा हुआ व्यक्ति है, बहुत इलाज की जरूरत है, सर्जरी बड़ी जबरदस्ती करने की जरूरत है। So it was said that I didn't have shoes till I saw someone who didn't have legs. मेरी शिकायत है कि मेरे पास एक अच्छे नए जूते नहीं है। नए जूते का मतलब घर में वैसे 15 जोड़े होंगे, वैसे क्लोजेट तो चेक करो, हो सकता है 40-25-30 जोड़े भी जूता मिल जाए, पर तब भी शिकायत है कि मेरे पास नए जूते नहीं है। दुखी है व्यक्ति, पर जिस दिन पता चले लाखों लोगों के जूता तो छोड़िए पैर ही नहीं है, तू तो जूते के लिए रोता है, तेरे पास एक जोड़ा पुराना जूता है, तू शिकायत करता फिरता है कि मैं कितना गरीब हूं, पर तुझे पता होना चाहिए कि दुनिया में लाखों लोगों के पास पैर ही नहीं है, जूता कहां से आए। तो तुझे इस बात की खुशी होने की जरूरत है कि कम से कम तेरे पैर तो ईश्वर ने नहीं काटा है, जूता ही तो नहीं है, पैर तो है। जो है उसको अप्रिशिएट कर करना सीखना जरूरी है, तो जो नहीं है वो कम पड़ने लग जाएगा। सो ये सिर्फ ईश्वर की बात नहीं है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी ग्रेटफुल होना जरूरी है, जिनको हम जानते हैं जिनको हम नहीं जानते। बार बार कहता हूं, हमारे और आपके लाइफ में बहुत सारी जगह ऐसे मोड़ आए हैं जहां बहुत सारे अननोन लोगों के कारण हमारे लाइफ में खुशी आई है, या जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते ऐसे लोगों के कारण खुशी आई है। हो सकता है वो व्यक्ति जिसने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, जिसने कोई सिस्टम डेवलप किया होगा जिसके कारण आपको सुख मिलता हो, आप नहीं जानते। हो सकता है वो साइंटिस्ट जिसके कारण आपके घर में सब सुख सुविधाओं के साधन है, अगर नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसा होता। आपको पता है दुनिया में पुरुष और स्त्री की जो डिफरेंसेस है, जो अनइक्वलिटी, उसको हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण किसका है? पॉलिटिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस की नहीं, साइंटिस्टों की है। आपके घर में वॉशिंग मशीन आ गए, कितना काम हल्का हुआ आपके घर की महिलाओं को। आपके घर में ब्लेंडर आ गए, दुनिया भर के वो शील बट्टा लेकर बांटती रहती थी। झाड़ू लगाने के जगह वैक्यूम क्लीनर आ गए। अब हुई ना, उनको भी रिलैक्सेशन मिला, कभी कभी उनकी जगह आप भी कर सकते हो। हम नहीं जानते किसने ये सब किया, जरूरी नहीं कि हम जनरल नॉलेज के बुक पढ़ते रहें किसने क्या निकाला, वो अननोन लोग हैं हमारे लिए, पर उनके कारण हमारे लाइफ में कितनी सुख सुविधाएं आई ये जानना बहुत जरूरी है। There are endless reasons to feel gratitude. Grateful होने के लिए, thankful होने के लिए reason ढूंढने लगें, करोड़ों करोड़ों में आपको reasons मिलेंगे। Ungrateful होने के लिए आपके reasoning बहुत छोटे हैं, कम है, पर हम उनको बहुत ज्यादा highlight करते हैं, इसीलिए वो हमारे life में भरे पड़े रहते हैं। हमारे देश में थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट नहीं होता, पर हमारी संस्कृति में थैंक्स करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, कोई पर्टिकुलर डे नहीं था सेलिब्रेट करने के लिए या उसको रिमाइंड करने के लिए। इसीलिए जो इंडियन वे ऑफ थैंक्सगिविंग का तरीका, वो भी थोड़ी समझने की जरूरत है। एक दो मिनट, हमारे यहां नियम बनाया गया कि हर व्यक्ति को 5 महायज्ञ, यज्ञ तो जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कुछ तो यज्ञ ऐसे होते हैं जो 1 साल, 10 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी चलते हैं, उनको महायज्ञ नहीं कहा, महायज्ञ उनको कहा जिसके पीछे सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। दैतिरी आरण्य का श्लोक है, मंत्र है, पंचवायते महायज्ञाः सतति प्राप्रतायन्ते सतति संतिष्ठन्ते देवयज्ञाः पितृयज्ञो भूतयज्ञ मनुष्य यज्ञो ब्रह्म यज्ञ इति। अब बोला कि ये पांच महायज्ञ ये डेली ड्यूटी है, हर आदमी को रोज करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ईश्वर को की उपासना करना, शास्त्रों को सेल्फ स्टडी करना, अपने नॉलेज को अपडेट करना और ईश्वर की उपासना करना। क्यों? एक्सप्रेसिंग योर ओन ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट इज गिवन बाय। ये रोज करने की थी। देव यज्ञ क्या है? जो आप अग्निहोत्र करते हैं, इससे आपके घर में समृद्धि नहीं आएगी, ना आपके बच्चे योग्य बन जाएंगे, ना आपके घर में धन दौलत आएगा। इसका उद्देश्य था कि वातावरण को शुद्ध करो। जो इकोलॉजी ने, जो नेचर ने आपके लिए कर किया है, नेचर आपके लिए करती है, आप उसको विथ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड आप उसके लिए कुछ करो। वायुमंडल को शुद्ध करो, हवा को, पानी को। उसमें एक तरीका है कि आप बड़े तरीके से पर्टिकुलर वे में यज्ञ करो। दूसरा कहा पितृयज्ञ, पिता माता का जो लाइफ में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है उनकी सेवा करो, उनको रेस्पेक्ट करो, उनके साथ बैठो, बातें करो। यज्ञ का तीन मीनिंग होता है, देव पूजा, दान, देव पूजा संगतिकरण, कंट्रीब्यूट करो, रेस्पेक्ट करो और उनके साथ मिलो। ईश्वर के लिए अपने अहंकार को त्यागो, उसके साथ मिलने की कोशिश करो, यूनिट करो, उसको रेस्पेक्ट करो। ये ब्रह्म यज्ञ है। पिता माता को रेस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, उनकी देखभाल करना, जो जरूरत उनको देना और उनके साथ टाइम बिताना, ये पितृ यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ, जो भी समाज सेवा में लगे हैं, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते। प्राचीन काल में जो वानप्रस्थ होते थे, पहले आश्रम व्यवस्था में हमने डिस्कस किया, या सन्यासी लोग होते थे, आज की भाषा में आप ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करें, जो लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, कोई एनजीओ हो, कोई इंडिविजुअल हो, जो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, एक बड़ी कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए सेवा करता है अपनी फिक्र किए बिना, उन लोगों को रेस्पेक्ट करना, उनको देना और उनके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना, ये था मनुष्य यज्ञ। और पांचवा था भूत यज्ञ। भूत क्या है? जो भी प्राणी मात्र है इंसान को छोड़ करके, उन सबके प्रति उनकी सेवा करना। कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, अब दुनिया भर में घूम घूम के नहीं कर सकते, आपके घर के आसपास जो भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको, उनका ख्याल रखना। उनका घर अगर उजड़ा हुआ तो उसको बसाओ, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। क्या मतलब था इन पांच महायज्ञों का? ये पशु पक्षियों का केयर करना यज्ञ कैसे? सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हजारों सालों तक लोगों को समझ में नहीं आता था इसका क्या मतलब है, अब समझ में आई जब क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होने लगे, अब कंसेप्ट आया इकोलॉजी। ये कीड़े मकोड़े से लेकर हवा, पानी, एटमोस्फियर, सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी लाइफ में। एक भी लिंक टूटता है, नष्ट होता है, तुम्हारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। देखिए भारत के बड़े सारे शहरों में क्या दुर्दशा आजकल है, पानी के लिए लड़ाइयां होती है, पानी नहीं मिलती है बड़े सारे शहरों, सारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। यही है कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा नहीं। जब सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा उसके बदले जो कुछ आप करोगे, वर्बली करोगे, फिजिकली करोगे, जो कुछ करोगे, वो सब आपकी ग्रेटफुलनेस होगा, वो सब आपका थैंकफुलनेस है। इसीलिए कहा वी मस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी गेट। एंड इन कंक्लूजन, ये भी एक इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ थैंक्स गिविंग है। प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमने 30-40 मिनट के प्रवचन सुना, हमने सुना कि ग्रेटफुल होना चाहिए, सुना, पर आपको पता है ज्यादातर लोग मैसेज क्या लेकर जाएंगे, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए मेरे प्रति, मैं सुनकर आया अभी, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड तुम्हारे में बहुत कम है, तुम ग्रेटफुल होते ही नहीं हो। मैसेज ये गया, मैसेज ये नहीं था, मैसेज ये था कि मैं ग्रेटफुल बनूं, मेरे अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आए, मैं दूसरों से एक्सपेक्ट ना करूं कि वो मेरे लिए ग्रेटफुल होता है कि नहीं होता है। अगर एक्सपेक्ट करूं इट्स मैटर ऑफ ईगो, पर मैं दूसरों के प्रति ग्रेटफुल बनूं, पर हमेशा मैसेज जब भी बाहर जाता है यही जाता है कि तुम नहीं सुधरे। मैसेज ये कभी नहीं होता है कि तुम सुधरे कि नहीं, मैसेज ये होता है कि मैं सुधरा कि नहीं, पर जब मैसेज लेकर जाते हैं कि तुम कितने सुधरे, ये पूछने के लिए। वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्रैटिट्यूड फ्रॉम अदर, फिर तो आप कभी भी ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हमेशा एक तो जो एहसान मिला ऊपर से ये भी चाहिए कि दूसरा आपके किए हुए को एहसान माने, उसमें भी आप दुखी हैं क्योंकि सामने वाला थैंक्स बोला नहीं ढंग से, तब भी आप दुखी मिलेंगे। रूल है कि हम दूसरों के प्रति थैंक्सफुल बने, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड बने, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो मेरे साथ क्या करता है। सो सर्विस शुड नॉट बी एग्जीबिशनिस्टिक। अगर मेरी सेवा, मेरा हेल्प, दूसरों के प्रति जो मेरा कंट्रीब्यूशन, अगर वो प्रदर्शनात्मक है, अगर वो दिखाने के लिए है कि मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, तो मैं किसी भी तरह का कोई मोरल काम नहीं करता हूं, मैं कोई अच्छा काम नहीं करता हूं। मैं बिजनेस करता हूं, बहुत तरह के बिजनेस करता हूं, बिजनेस का मतलब जहां एक्सचेंज होता है, आप कुछ देते हैं सामना देता है। मैं अच्छा काम करता हूं उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ग्रेटफुलनेस चाहिए, यह भी एक तरह का एक्सचेंजिंग है। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग द बिजनेस। सो यू मस्ट सीक नो रिवर्ड। सेवा वही होती है जिसके बदले रिवर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं होता। ये रिवॉर्ड हमेशा फाइनेंशियल नहीं होता है देवियों सज्जनों, इवन गेटिंग रेस्पेक्ट, एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट ऑल्सो इज अ रिवॉर्ड, नॉट इवन ग्रैटिट्यूड और थैंक फ्रॉम द रिसिपिएंट। अगर ऐसा भाव लेकर चले तो मैं खुद खुश रहूंगा, सामने वाले का पता नहीं। और हमारा धर्म आपको, मुझे, इंडिविजुअल को बताता है तुम्हें क्या करना है तुम्हारी खुशी के लिए। सामने वाले की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों को संस्कार देना है दो, बाकियों की चिंता छोड़ दो, वो कैसे सुधरे या ना सुधरे, खुद को सुधारें, खुद की भलाई के लिए। दूसरों की चिंता छोड़ दो, वो खुद कर लेंगे। दूसरा कितना ग्रेटफुल है उसकी चिंता करना छोड़ दें, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ वो चिंता करें, मेरी भलाई से दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। दुनिया को सुधारने से कोई नहीं सुधरने वाला होता है। लास्ट में एक छोटी सी अंग्रेजी में प्रेयर इसी के साथ खत्म करते हैं। ओ गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, गिवर ऑफ ऑल ग्रेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ। हम भूल जाते हैं सबसे बड़ा ग्रेटफुल तो होना चाहिए कि भगवान ने एक जिंदगी दी है, फॉर द ब्रीथ दैट सस्टेन्स माय लाइफ, फॉर द बीटिंग ऑफ माय हार्ट, फॉर द फूड ऑफ दिस अर्थ दैट नर्चर्स लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द बिलव्ड वंस हू शेयर लाइफ विथ मी। मैं इतना कड़वा हूँ, इतना गंदा हूँ, कैसे कैसे खराब व्यवहार करता हूँ, तब भी मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। कोई दावा करेगा कि मैं 100% शुद्ध आत्मा हूँ? बुराई सबके अंदर है, उसके बावजूद भी आपके अपना फ्रेंड सर्कल है, आपके अपने स्पाउस हैं, आप आपके बच्चे हैं, उनके प्रति थैंकफुल होने की जरूरत है कि नहीं? Those in our world beside me, जिनको मैं नहीं जानता हूँ, those in worlds beyond my knowing, for the love of family and friends, without which there would be no life. तभी उसे जनो, उस ईश्वर से लेकर के छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भाव जब आपका उस gratitude से भरा होगा, उस धन्यवाद से भरा होगा, तो हमारा आपका हमारा जीवन ही ज्यादा खुशी से भरा हुआ मिलेगा, और हमारी खुशी से हम दूसरों को कुछ शेयर कर सकते हैं। दुखी आत्मा दुखी बांटता है, खुश व्यक्ति खुशी ही बांट सकता है। तो इस हफ्ते जो हमने ये थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया, अगर हम अपने इंडिविजुअली इसको अपने लाइफ में कुछ ला सकें, तो हम अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए भला कर सकते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
यहाँ है।